فرمایا علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا، اتنے پرانی سینچریز پہلے کی گزرے ہوئے لوگ تھے، تو مشرکین مکہ نے بھی اپنے سامنے تھوڑی کوئی عذاب آتے ہوئے دیکھا، کوئی قوم تباہ ہوتے. مطلب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اس پہ پونڈر نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں، کیونکہ وہ لوگ جاتے تھے تجارتیں کرنے کے لیے، ٹریڈنگ راؤٹس پہ جاتے تھے، وہاں پہ کئی قوموں کے تباہیاں اور وہ نظر آتی تھی کہ یہاں پہ فلاں قوم بستی تھی، دیکھو ان کے ساتھ یہ ہو گیا. آج ہم بھی پڑھتے ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، چلے ہم خود جا نہیں سکتے، اگر دیکھ کے نہیں آ سکتے، لیکن کئی ہم ڈاکیومینٹریز دیکھ سکتے ہیں، کتنی قوموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے کھنڈرات، ان کی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ دیکھ کے بس سوچتے ہیں، اچھا اتنے تھاؤزینڈ ایئرس فلاں قوم یہاں پہ رہی، یہ ان کے گھر تھے، اچھا وہ لوگ ایسے رہتے تھے، اچھا وہ لوگ یہ کھاتے تھے، اچھا وہ لوگ ایسے کرتے تھے، تو بس اتنا کافی ہے، اتنا ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا. کبھی سبجیکٹس بھی اگر آپ نے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں تو اسی طرح سویلائزیشن، اینشنٹ سویلائزیشن پڑھائی جاتی ہیں، ہسٹری کی بکس میں دیکھتے ہیں نا، اپنے بچوں کی کتابیں دیکھیے گا، وہ بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے. تو یہ دیکھنا نہیں، یہ اسٹڈی نہیں چاہیے، اسٹڈی وہ چاہیے جس میں آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ اللہ ہے جس نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی. وہ زمین میں بستے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے، پر اس میں مجھے تو زیادہ اس کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ میں سے کوئی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہی ہیں، ان کو تو خود ہی پتا ہوگا، یا آپ لوگ دیکھ لیں، ایسے اپنے بچوں کی کوئی کتاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں اور ذرا اس کو پڑھیں، اس نظر سے پڑھیں. یہ دیکھیں، اس کو یہ نہ سوچیں یہ تو دنیا کا علم ہے، بس دنیا کا علم کو کیا کرنا ہے، ہم تو قرآن ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں ہے تم نے، تو ذرا پڑھیں ان کی ہسٹری پڑھیں، وہ دنیا کا علم نہیں ہے. قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اس علم کو لو، لیکن فرق کیا ہے، ایک بندہ اور پڑھتا ہے تو وہ جسٹ فار دا سیک آف نالج پڑھتا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے جب پڑھنا ہے تو کسی اور نظر سے پڑھنا. وہ نظر کیا ہے ابھی دیکھیں، قرآن آپ کو بتائے گا. تو بتایا جا رہا ہے کوئی تم دنیا میں ایسے کوئی پہلے کوئی خاص لوگ نہیں، تم پیدا ہو گئے، تم سے پہلے بھی ہم، تو آج بھی ہم بھی اپنے آپ کو سب سے ماڈرن، سب سے زیادہ ایڈوانسڈ، سب سے ترقی یافتہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس پرانے لوگ تو وہ پرانے تھے، وہ تو اینشنٹ تھے، وہ تو فلاں تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں، اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں. آج ان کے اسکرپچرز، ان کی جو رائٹنگس ہیں، آج تک لوگ پڑھ نہیں سکے، کئیوں کی اتنی جو لینگویج کے ماہر ہیں وہ نہیں جان سکے انہوں نے کیا لکھا. اور ان کی ترقیاں، ان کے کھنڈرات، ان کے جب کھدائیاں کی گئی ہیں، موہنجے داڑو اور ہڑپا وغیرہ کا آپ نے پاکستان میں نام سنا ہوگا، ٹیکسلا وغیرہ کی طرف آپ جائیں، جو کھدائیاں کی گئی ہیں، لوگ تو جاتے ہیں وہاں پہ پکنک منانے کے لیے، پکنک اسپاٹ ہے وہ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وہ تہذیبیں، دیکھو لوگ کتنے کتنے مردے وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ کھدائی کرتے ہیں تو جیسے پتہ چلتا ہے ایک ایک گھر میں جیسے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور وہیں کے وہیں مر گئے. تو دیکھو ان مادی ترقیوں کا کیا انجام ہوا، جن ترقیوں پہ انسان بھولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہ ہے، ہم کتنے ترقی یافتہ ہو گئے، وہ قومیں بھی یہی سمجھتی تھی، ان کا انجام کیا ہوا. ما لم نمکن لکم، جو نہیں بسایا ہم نے تمہارے لیے. مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے تمہیں تو وہ چیزیں ملی بھی نہیں ہیں جو ان، جو اسٹرینتھ، جو جیسی ترقیاں ان لوگوں کی تھیں، ویسی تو تمہیں شان و شوکت ملی بھی نہیں ہے. نمکن لکم، کم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. یعنی انہوں نے جو ان کی کنسٹرکشن تھی، آج بھی دیکھیں آپ کھڑی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال. یہاں پہ آپ دیکھیں، آج ہم اتنے ایڈوانس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ گھر بنائے 100 سال 200 سال بعد اس کا حالت کیا ہو جاتی، اور انہوں نے پتھروں کو تراش کے کیسے کیسی چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو ویسے دنیا میں بسے ہی نہیں. بسنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا اقتدار، اتنا ترقی، اتنی طاقت جیسی ان لوگوں کو ملی ہوئی تھی اس دنیا میں، ویسی تمہیں نہیں ملی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے آسمان کو ان پہ برسنے والا بنایا، یعنی آسمان ان پہ بارش برساتا تھا. اور جب بارش ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ، تو وہ جگہ بہت یعنی فرٹائل بھی ہوتی ہے، بہت وہاں پہ ظاہر ہے چیزیں بھی اگتی ہیں، फल पौधे खेत कल्याण और फिर वहां पे जाहिर है जानवर उनको खाएंगे तो जानवर भी बहुत होंगे, खूब मोटे ताजे, उनसे दूध भी आएगा गोश्त भी आएगा। तो वहां किसी जगह की प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है ना, कि वहां की खुशहाली के लिए कि बारिश हो। ठीक है, आज देखें आप अफ्रीका का मसला ही क्या है, वहां पे कहत क्यों होता है, हर वक्त हम देखते हैं वो क्यों इस तरह के उनके हालात हैं, क्योंकि बारिश नहीं है वहां पे। कहते हैं इतने इतने सालों बारिश नहीं होती, लेकिन इंसान इतनी तरक्की करके भी बारिश नहीं वहां पे बरसा सका कि चलो बारिश दो चार दिन बाद कोई बारिश कर आया करे वहां पे जहाज में आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती। वजालनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम, वो कौमें ऐसी थी कि उनके ऊपर बारिशें भी होती थी, यानी ये बारिश से बताने से मतलब क्या, बहुत खुशहाल थी वो और वो जमीन में बहुत एडवांस थी, बहुत उनका अच्छी मजबूत थी और उनके पास नहरें भी बहती थी उनके नीचे से। फिर क्या हुआ, ये उनकी प्रोस्पेरिटी बता के यहां तक तो हम ठीक है, हमने भी पढ़ा हुआ है तो इसलिए यहां तक हम सारों को पता है। वॉट नेक्स्ट, अहलकनाहुम, हमने हलाक कर दिया उनको, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम वहां पे पढ़ते हैं अच्छा उनके ऊपर कोई सैलाब आ गया, किसी का उनके ऊपर कोई बीमारी, कोई ऐसी वबा फूट पड़ी, वो फलां पूरी पूरी कौम खत्म हो गई और बस इतना पढ़ के खत्म। अल्लाह ताला कहता नहीं, खुद ही नहीं हलाक हो गई, हमने हलाक किया उनको, हमने अहलक ना, हमने हलाक किया उनको। क्यों क्यों उनको हलाक कर दी, उनके बच्चे उनके बूढ़े उनके जवान औरतें सब एक ही टाइम पे खत्म हो गए। ठीक है मरना तो सब नहीं है, लेकिन एक मौत वो है जो अजाब के साथ आए, जिसमें अजाब हो, जिसमें उनकी नस्लें खत्म हो जाए, जिनमें उनकी सारी बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाए, जैसे किसी ने जड़ काट दी। किस वजह से ये सब हुआ, इतनी तरक्कियों के बावजूद क्यों हुआ ये, भी जुनूब भी है उनके गुनाहों की वजह से। शायद अगर ये बात आज आप किसी को बाहर जाके बताएं ना, इवन अपने मुसलमानों को, कि ऐसे ऐसे हुआ और वो अपने गुनाहों की वजह से वो बस्तियां अल्लाह ने हलाक कर दी, तो वो हंसेंगे आपके ऊपर, कहते वो गुनाहों की वजह से, वो कहां से गुनाहों की वजह से भाई, वो तो वहां पे ये आसमानी आफत आ गई और फलानी आ गई और ये जलजला आ गया और किसी की ये तबाही इस वजह से हुई, और वो सारे मादी जो उनकी रीजन है ना वो ढूंढते। कोई ये नहीं समझता कि गुनाहों की वजह से इंसानों से नेमतें छीन ली जाती हैं, ये कभी सोचा आपने? ये आयत बताती है ना कि इंसानों की नाफरमानियों की वजह से, जुनूब गुनाह नाफरमानियां, इनकी वजह से अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। हालांकि उनके पास इतनी तरक्कियां थी, जाहरी भी मादी वसाइल भी इतने ज्यादा थे, खुशहालियां भी इतनी ज्यादा थी, अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दिया। इसका मतलब है अगर माशरा आपका गुनाहगार हो जाए ना तो ये हाल होता है। आज कौन सी चीज है जो हमारे अंदर नहीं है, गुनाहों में से कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन क्यों बचे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है इस वजह से, आपकी उम्मत एक दफा में वाइप आउट ना हो जाए जैसे पिछली कौमें हुई थी। लेकिन स्टिल हम इधर उधर देखते हैं कि चंक्स में पोर्शंस में तबाही आती है और फिर हम रोते हैं। मुसलमानों पे ये क्यों आता है, ये नहीं समझते कुरान कहता है भी जुनूब भी है उनके गुनाहों की वजह से, ये फिर भूल जाते हैं, फिर डिस्कशन सेशंस होते हैं क्यों हुआ, ये प्रिकॉशन नहीं ली गई, किसी ने बताया नहीं, पहले से बताया होता तो अपना इंतजाम करते, इस तरह की बातें करते हैं। और फिर वह अनशाना में बादिहिम करनन आखरीन, उसके बाद अल्लाह ने उठा दी इसके बाद दूसरी कौमें, हमने दूसरी बस्तियां उठा दी इसके बाद, यानी एक को तबाह किया और उसके बाद दूसरी उनकी जगह ले आए, रेज कर दी, ग्रो कर दी, ग्रो किया उनको, अनशा होता है ना रेज करना और ग्रो करना, तो हमने दूसरी उठा दी। यानी अल्लाह ताला को कोई इससे परवाह नहीं है कि ये इतने सारे लोग अगर मर जाएंगे तो क्या होगा, जमीन पे क्या होगा, इतनी जमीन में इंसानों की कमी आ जाएगी, नहीं दूसरे ले आया अल्लाह ताला, अल्लाह को तो इस चीज से बेनियाज है वो, पहले भी आ चुका है ना, हमने पिछली उसमें पढ़ा था सूरत में कि अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें उठा के ले जाए और तुम्हारी जगह औरों को ले आए, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, है ना। तो अल्लाह ताला आप ये देख लेना, आज भी दुनिया में एक दिन में हजारों लोग मरते हैं, मौतें होती है ना हजारों, फिर भी आपको कहीं पे भी कोई वैक्यूम नजर नहीं आता कि कहीं ऐसा खला पैदा हो गया कि हाँ इतने लोग मर गए। नहीं, फिर भी दुनिया में लोग चलते फिर रहे हैं और मर भी रहे हैं और दोबारा बसने वाले भी लोग हैं। तो देखो अल्लाह ने उनको उठा लिया, उनको खत्म कर दिया, और देखो आज उन वो भूली बिसरी दास्ताने बन गए, सिर्फ किस्से बन के रह गए बस, कोई तो उनके किस्से बताने वाला भी नहीं था जो बचा हो। इससे पता चलता है दुनिया में भी मकाफाते अमल है, दुनिया में भी इंसान को उसके अमल का नतीजा मिल जाता है। अल्लाह अकबर। वलौ नज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाला अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन। अगर हम नाजिल करते अलैका आप पर एक किताब कागज की सूरत में और ये उसको हाथ भी लगा लेते, तब भी इन्होंने कहना था, जिन्होंने कुफर किया इन्होंने कहना था ये तो जादू है जो हमारी आंखों पे किया हुआ है। ये क्या किस्सा है? असल में हुआ ये था, मुश्रिकी ने मक्का जैसे हर वक्त कोई ना कोई मोजे का मुतालबा करते थे, तो कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन अभी उमैया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुतालबा पेश किया और उसने कहा कि मैं तो आप पे उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता जब तक कि मैं ये देख ना लूं अपनी आंखों से कि आप आसमान पे चढ़ जाएं, वहां से हमारे सामने एक किताब लेकर आएं जिसमें मेरा नाम लिखा हो, तो तब मैं जाके आपकी तस्दीक करूंगा। और ये भी कह दिया कि अगर आप ये सब कुछ करके दिखा भी दें, मैं तो जब भी मुसलमान होता नजर नहीं आता। आपको पता है बाद में ये मुसलमान भी हो गए थे सुभान अल्लाह, और इस्लाम के गाजी बने थे, एक गज़वे में शहीद हुए थे। और तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर इनके मुतालबे मान भी लिए जाएं और एक किताब कागज की सूरत में यानी एक बुक की सूरत में एक किताब इनके सामने नाजिल भी कर दी जाए और ये उसको छू भी लें, छू लेने का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि इंसान छूता कब है कोई चीज को, टच करके कब देखता है? जब उसको यकीन ना आ रहा हो तो वो कहता है देखूं तो सही रियल भी है कि नहीं, तो ये देखने के लिए कि ये हकीकत है कि नहीं है। ऐसे ही तो नहीं कि हमारे हमें कोई ख्वाब हम देख रहे हैं या हमें कोई ऐसे ऐसे ही दिखाया जा रहा है, इल्यूजन है। नहीं, छू के भी देख लें, अपने हाथों से छू के देख लें, तब भी जिसने ईमान नहीं लेकर आना वो यही कहेगा ये तो जादू है खुला। माइंड मेकअप जब इंसान ने किया हो ना कि मैंने नहीं मानना, तो तब इंसान मौजे देख के भी मानता नहीं है। और अल्लाह ताला का ये फैसला था कि मौजा ये किसी किस्म का भी मौजा इस तरह का मांगेंगे तो इनके मुतालबे पे अल्लाह ताला ने कोई मौजा नहीं दिखाना, नहीं दिखाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखेंगे क्या होगी, कि एक तरफ मुशरिकीन का इतना प्रेशर था कि अच्छा तुम सच्चे रसूल हो ना, दिखा दो फिर मौजा, ये कौन सा तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात होगी, दिखाओ ना मौजा। दूसरी तरफ अल्लाह ताला का फैसला कि मौजा हमने नहीं दिखाना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर तो कहीं पे भी नहीं चलता था ना, इधर अवाम है जो कि इनके बड़े बड़े लोगों की बातों में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ वाकई हमारे सरदार तो ठीक कह रहे हैं ना, दिखा दे आप मौजा। दूसरी तरफ वो अल्लाह ताला से मांगते तो अल्लाह ताला फरमाते नहीं, मौजा नहीं दिखाना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है पिछली सूरत में, जब उन्होंने मायदा मांगा था तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इसके बाद अगर किसी ने इनकार किया तो उसको वो अजाब दूंगा ना कि दुनिया में किसी को नहीं हुआ। तो अगर इनको भी मौजा दिखा दिया जाता तो उसके बाद मोहलत खत्म हो जानी थी। अल्लाह ताला एक टाइम देता है ना, मोहलत देता है। अल्लाह को पता है कि ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये अब्दुल्ला बिन अभी उमैया ने मौजा मांगा, ये उस वक्त तो मुसलमान हुए, बाद में लेटर ऑन लाइफ में जाके मुसलमान हुए थे। तो अगर मौजा आ जाता उसी वक्त मोहलत खत्म हो जाने की, जबकि अल्लाह ताला जानते हैं किसने मुसलमान होना है, किसने 5-7 बाद, किसने 10 साल बाद जाके मुसलमान होना है, किसने मदनी दौर के भी आखिर में जाके मुसलमान होना है। अगर इनके लिए अभी ये फैसला कर दिया गया तो ये तो सब खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मौजा नहीं आ सकता। यहां से आपको पता चलता है ना कि हक को कबूल करने के रास्ते में क्या चीज रुकावट बनती है, अपना नफ्स, कि मेरी अकल बड़ी है, बस मुझे पहले दिखाओ फिर मैं मानूंगा। अल्लाह हू अकबर। तो अच्छा ये बताएं, हमने तो आज प्रैक्टिकली देख लिया किताब को, कर्पास में, कागजों में लिखी हुई, और अपने हाथ से हम छू के भी देख सकते हैं, इट्स रियल। तब भी हमारे ईमान की क्या सिचुएशन है, बताएं क्या सिचुएशन है। तो जरूरी नहीं होता कि कोई चीज जैसे इंसान मुतालबा कर रहा हो वो सामने उनके भी आ जाती और वो ईमान लेकर आते, नहीं, उन्होंने तब भी ईमान नहीं लाना था, क्योंकि ईमान मौजे देख के नहीं लाया जाता। जैसे किसी ने कहा था, उसने अपनी बात शेयर की थी मुसलमान होने की, कि मैं कैसे इस्लाम लेकर आया था, तो उसने कहा मैंने कुरान भी पढ़ लिया था लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही कहता जा रहा था मुझे कोई मौजा दिखा तो फिर, कोई निशानी अपनी दिखा तो फिर मैं इस्लाम लाऊंगा। तो कहने लगा कि फिर मेरे सामने ये बात आई कुरान की, ये बात कि कितनी हमने निशानियां दिखाई हैं तुम्हें, अभी भी तुम कोई निशानी चाहते, कितनी अल्लाह ताला निशानियां दिखाता है, दिन रात हर तरफ हमारे निशानियां बिखरी हैं, इसने नहीं देखना, आंखें बंद किए रखनी है, तो फिर उसको तो कोई मनवा नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कम मौजे लाए थे? तो उलमा यहूद ने कोई माना? हमने कितने पढ़े मौजे, कि वो परिंदा भी मट्टी का बना के जिंदा कर लेते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह के इज़्ज़त से, बीमारों को शिफा देते थे अल्लाह के इज़्ज़त से, कितने बड़े बड़े मौजे थे। जब वो इस पे नहीं माने तो इंसानों की साइकी ये नहीं होती कि बस उनको कोई मौजा दिखा दिया जाए तो वो एकदम मान लेंगे, ओ अच्छा अब हमें यकीन आ गया कि अल्लाह, नहीं। तो अल्लाह ताला मोहलत तब तक देता है जब तक कि मौजा ना दिखाया गया। आपने देखा कौमे साले जो थी समूद, उन्होंने मौजा मांगा था और उसके बाद उनकी तबाही का फैसला आ गया था। وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, और वो उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारा गया हम पे कोई फरिश्ता, अगर रसूल बन के आना ही था तो कोई फरिश्ता आ जाता, और फरिश्ता आगे आगे कहता रहता हटो बच्चों के शोर मचाता और लोगों को कहता इनके ऊपर ईमान लेकर आओ तब हम मानते। وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम फरिश्ता भी नाजिल कर देते तो फैसला कर दिया जाता मामले का, फिर इनको मोहलत ना दी जाती। यानी फरिश्ता अगर आ जाता तो फिर सोचो क्या होता, फरिश्ता तो अजाब लेकर आता है तो फिर तो अजाब ही आना था। दूसरे ये कि अगर फरिश्ता आ जाए तो गैब का पर्दा तो उठ गया ना, और ईमान तो है ही गैब के पर्दे में जो चीजें हैं उन पे ईमान लाना, यही तो इम्तिहान है। और फरिश्ते नजर आ जाने लगे हमें तो फिर तो गैब, कोई गैब ही नहीं रहा ना, फिर तो इम्तिहान खत्म हो गया, फिर तो रिजल्ट का टाइम आ गया। وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, और अगर हम बनाते कोई फरिश्ता भी भेज देते रसूल बना के तो आखिर हम उसको भी तो इंसान ही बना के, एक फरिश्ता जो बनाते हम उसको एक इंसान की मर्द की शक्ल में ही भेजते ना, अगर ये उसको इंसान की शक्ल में देख लेते इन्होंने कहना था लो ये तो इंसान है। देखिए दो ही सूरतें हो सकती ना फरिश्ते के आने की, या तो वो फरिश्ता बन के आता, अगर फरिश्ता बन के आ जाता तो लकुदी अल अमरु का मतलब ये भी हो गया कि इंसान फिर उसकी ताब ही ना ला सकते, उनका फैसला हो जाता यानी मर ही जाते। इंसानों के दिल थोड़ी इतने मजबूत हैं कि वो फरिश्ते की ताब ला सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पे बैठे हुए बेहोश हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अंबिया के दिल तो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो इंसान ताब नहीं ला सकता फरिश्ते की, और तो फरिश्ता अगर आता तो जाहिर है इंसानी शक्ल में भेजते, अब इंसानी शक्ल में भेजते तब भी मसला होना था लोगों के, ये तो इंसान है फिर उसको पहचानते कैसे वो। अब देखिए ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जो हदीस है जिब्राइल है मशहूर हदीस है, तो इंसानी सूरत में आए थे, सारे सहाबा कराम देख रहे थे, जब वो चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको बुलाओ, वो भागे गए तो वहां पे कोई भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल थे, लेकिन सहाबा ने बिल्कुल भी नहीं पहचाना, उनको शक भी नहीं गुजरा कि ये जिब्राइल हो सकते। जब फरिश्ते इंसानी सूरत में आते हैं तो कोई पहचान नहीं सकता। इवन देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पहचाना, तो उनके पास फरिश्ते इंसानी सूरत में आए थे तो उन्होंने नहीं पहचाना था, खाना ला के सामने रख दिया। पूरी की पूरी कौम थी कौमे लूत, जो उन्होंने नहीं फरिश्तों को पहचाना, उन्होंने कहा ये दो ये हमारे हवाले करो इनको, इन लड़कों को, तो उन्होंने नहीं पहचाना था। तो जब अगर फरिश्ता इंसानी सूरत में आता फिर तुमने पहचानना नहीं था। और दूसरी बात ये कि अगर फरिश्ता अल्लाह ताला रसूल बना के भेजते तो लोगों ने कहना था ये तो फरिश्ता है, ये तो ये सारे काम कर सकता है, हम कहा, हम बेचारे इंसान कमजोर, इसको क्या पता भूख क्या होती है, इसको क्या पता खौफ क्या होता है, इसको क्या पता लालच क्या होता है, इसको क्या पता गम और खुशी क्या चीजें होती हैं, औलाद का गम क्या होता है, इंसान की मजबूरियां क्या होती हैं, इस फरिश्ते को क्या पता, इसके साथ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं। तो इंसान ने फिर किसी को ऐसे बहाने करके ना फॉलो करने के लिए फरिश्ता एक रोल मॉडल नहीं बन सकता था। इसीलिए इंसान को, गौर से सुने, इंसान को रसूल बना के भेजा गया। एंड हम तुले रहते हैं इंसान को भी नूर साबित करने में कि वो भी नूर है, और नूर तो फरिश्ता होता है, नूर से तो फरिश्ता बना है ना। अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे रोल मॉडल बनाने के लिए इंसान को ही चूज किया, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर क्या करें हमारी अकलों का कि हम उनको इंसान मानने को तैयार नहीं होते, और इसमें उनके लिए समझते हैं कि हमने कोई शायद बेइज्जती कर दी उनको इंसान कह के, हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी ऑनर की बात है कि इंसान होते हुए उन्होंने वो काम किए जो कि दूसरे इंसान कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो मजबूरियां हम नहीं कर सकते। उन्होंने साबित किया कि एक इंसान भी इस दर्जे तक पहुंच सकता है, इस बुलंदी तक। وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, और अलबत्ता हम मुश्तबे कर देते इन पर जिस शुबे में वो मुबतला, यानी फिर तो कंफ्यूजन और बढ़ जाती और मुश्किल पड़ जाती, इंसान फरिश्ते के बारे में शक में ही रहता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, नबी ये कोई ऐसा नहीं कि आपका ही मजाक उड़ाते हैं। वो कहते थे ना अगर अल्लाह ने रसूल बनाना है तो यही रह गया था रसूल बनाने को, हम इतने बड़े बड़े जो सरदार हैं वो मर गए थे। नहीं ऐ नबी, आपका ही नहीं ये मजाक उड़ाते, आपसे पहले भी रसूल आए थे उनका मजाक उड़ाया गया, आप फिक्र ना करें, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आपसे पहले भी रसूलों को हकारत से देखा गया, बातें बनाई गई उनके ऊपर, गलत किस्म के अल्फाज उनको कहे गए। याद है आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम का किसी ने सुना हुआ किस्सा, क्या क्या उनको कहा गया था, कहते थे कि अगर ये इतना ही अल्लाह वाला होता तो इसके ऊपर ये तो ना होता कि आप जिस्म ऐसा, बीमारी ऐसी हो गई थी लोगों ने उठा के शहर से बाहर फेंक दिया था, अगर ये इतना ही अल्लाह का नेक बंदा होता तो इसके साथ ये होना था। कई रसूलों को किस किस तरह तंग नहीं किया गया। तो फहाक बिल्लदीना साखिरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनमें से, जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे, किस चीज का मजाक उड़ाते थे, अजाब का। ले आओ ना अजाब, तुम तो रोज कहते हो अजाब आ रहा है अजाब आ रहा है, अब अजाब तो तुम्हारा आता ही नहीं, किधर गया, हाय हाय अजाब आ गया हमारे ऊपर, वो हो बड़ा सख्त अजाब है भाई, ये सब इतनी यानी हकारत से बातें करना, सखीरू में है ना कि इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएट करना, इतना अजाब का मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे। अब देखें एक पैगंबर पे क्या गुजरती होगी, तो बताया जा रहा है देखो नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक ये मजाक सहते रहे। तो पैगंबरों ने ये बातें सही, उनके साथ भी यही हुआ, बात सिर्फ ना टाइमिंग की है, वक्त की है, टाइम फैक्टर की है। लोग समझते हैं कि शायद वो मजाक उड़ाते हैं या बातें मनाते हैं तो अल्लाह ताला उनको पकड़ नहीं सकता, इसलिए पकड़ नहीं आ रही, अब लेकर आओ ना जल्दी से, फिर लेकर आओ अजाब। फिर तो ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह भूल गया है या वो पकड़ नहीं सकता, अल्लाह ताला चाहे तो उनकी जुबानें उसी वक्त बंद हो जाए, मगर अल्लाह के हाँ मोहलत दी जाती है, قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله أكبر. ان سے کہو اے نبی ان سے کہیں زمین پہ ذرا چل پھر کے دیکھیں, دیکھو تو صحیح, ایکسپلور کرو زمین کو, جاؤ نکلو تباہ شدہ بستیوں کو دیکھو, جو سب جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا, تم دیکھو گے نا, یہ تو تمہارے اندر ایمان اترے گا. اب دیکھیں میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ موہنجو دڑو, ہڑپا, ٹیکسلا وغیرہ, ان کے آثار کسی نے دیکھے ہوں, یا ہم چلے میوزیمز میں آپ نے دیکھا ہو, یا آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ کوئی پروگرام دیکھی ہوں, جو یہ تباہ شدہ بستیاں ہوتی ہیں کیا نظر آتا ہے وہاں پہ, اکثریت میں آپ دیکھیں گے وہ سارے لوگ جو تھے نا ان کے آئیڈلز تھے, بت پرست تھے, وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور ان کی جب یہ کھدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے سے بڑے بڑے بت نکلتے ہیں, اور ہم کبھی اس طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کیا وجہ ہوئی ان کی تباہی کی. آج ہمارے ہاں بھی جب ایسی تباہیاں آتی ہیں تو ہم آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہوتے. نام سے تو اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں مگر اللہ کی کتاب کے الٹ چلنے والے ہیں. ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ہم کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے دیکھو گناہوں کی وجہ سے اگر وہ تباہ ہو گئے تو آج ہمارے پر بھی کوئی تباہی آ سکتی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں یہاں پہ کہا گیا نا کئی فکان عاقبت المکذبین, تکذیب کرنے والوں کی, جھٹلانے والوں کی. ہم ٹھیک ہے زبان سے نہیں جھٹلاتے, ہم زبان سے کہتے ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں, ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں. عمل ہمارا بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان نہ اللہ پہ ہے نہ آخرت پہ ہے. تو ٹھیک ہے ذرا جا کے انجام دیکھ لو ایسوں کا, کیسے وہ اپنے مال و اسباب سمیت گھروں میں دفن ہو گئے, اپنے ہی گھروں میں. تو تم خود سوچ لو کہ تمہارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو تو پکے سچے مومن کہتے ہیں اور ایمان کے دعوے کرتے تھکتے نہیں, لیکن اگر ہمارا عمل تکذیب کر رہا ہے, اگر اللہ کا حکم ہے فحاشی سے دور رہو, شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے, اور ہمارے علاقوں میں اڈے ہیں فحاشی کے, یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ فحاشی کا کاروبار ہوتا ہے لیکن وہ چل رہے ہیں اور سب لوگ آرام سے گھوم رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فحاشی ہو رہی ہے یہاں پہ, بے حیائی کے کام ہوتے ہیں, تو اٹس اوکے, ان کے نام بھی دیے گئے ہیں کہ یہ یہ نام ہے ان علاقوں کے, سب کو پتا سود کو اللہ نے حرام کیا مگر سود گھر گھر میں چل رہا ہے, مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, ہمارے گھروں کا جو رہن سہن ہے کیا واقعی وہ ویسا ہے جیسے اسلام کہتا ہے, یا ہم اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں. اسلام ہمارے کیا کہتا ہے ہمارے رہن سہن کے بارے میں, شاید ہم تو جانتے بھی نہ ہوں. کیا مکس گیدرنگز ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی, کیا یہ اللہ کا حکم ہے, کیا یہی اسلام ہے, ہمارے گھروں میں ہماری مرضیاں چلتی ہیں یا اللہ کی مرضی چلتی ہے. ہم اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو بس مسلمان, ہم تو کلمہ گو, ہم تو فلاں. کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عمل سے ہی اس کلمے کو جھٹلائے. تو ہم دیکھیں ان آثار کو اور ان سے سبق حاصل کریں, دیکھو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کیسی آتی ہے, ہم ڈر جائیں, اپنے اعمال کو درست کریں. بجائے ہم کیا دیکھ کے کیا کہتے ہیں, او بھلا اس بچے کا کیا قصور تھا, یہ کیوں مر گیا, بھلا فلاں نے کیا قصور کیا تھا, فلاں کے اوپر کیوں ایسا آ گیا. بھائی ہمارا کام حساب کتاب لینا نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, جس کا کام ہے اسی کے لیے رہنے دیں. ہم نے یہ سارے آثار دیکھ کے, یہ ساری باتیں دیکھ کے, اس کے بعد ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اللہ کی گرفت کو سمجھنا ہے کہ کس قدر پاورفل ہے اس کی گرفت, उसकी गृह से कोई बाहर नहीं है। हम न डर होके ना फिरते रहे दुनिया में, हम जो मर्जी करेंगे कुछ नहीं होता हमें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين